भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खट्टी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है।
हम तीनों तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं, तो हमने सोचा आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए।
तो आइए प्रणय, सौरभ और ख्याति के साथ करते हैं पुलियाबाजी।
हेलो सौरभ और प्रणय, कैसे हैं आप?
एकदम बढ़िया। मैं तो, प्रणय तुम बताओ क्या हाल चाल है?
सौरभ, बैंगलोर में सब लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं। कब से IMD ने बोल रखा है कि बारिश होगी और बारिश हुई नहीं, तो लोग उसी के ऊपर रो रहे हैं कि यार पानी क्यों नहीं आ रहा।
हम सब लोग वो लगान वाले फार्मर्स की तरह हैं आजकल, रोज देखते रहते हैं कि बारिश कब आने वाली है। रोज ठंडी हवा आती है तो लगता है बारिश आने वाली होगी अब तो, लेकिन ठंडी हवा आती है, पानी का कोई दूर दूर तक वो नहीं है।
हाँ, वो गाना ना, कारे मेगा पानी तो बरसाओ।
हाँ, अच्छा, हम आज का बाकी का एपिसोड शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ, क्योंकि काफी बार शायद लोग एंड में सुनते नहीं होंगे। तो हमारे श्रोताओं को ये बताना था कि अब पुलियाबाजी सबस्टैक पर भी है, तो आप सबस्टैक पर puliyabazi.substack.com या तो puliyabazi.in पर जाके देखिए। आप हमारे एपिसोड्स के ऊपर कमेंट भी कर पाएंगे और उस पुलियाबाजी पे हम एक टिप्पणी सेक्शन में हम हिंदी में लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ अलग अलग टिप्पणियाँ आपको वहाँ पे भी सुनने और पढ़ने को मिलेगी। तो हाँ, ये थोड़ा सा जरा देख सकते हैं, बाकी आज का कंटिन्यू करते हैं। हाँ,
पर ख्याति मुझे बहुत दुख हुआ ये जान के, आपको लगता है हमारे श्रोता अंत तक सुनते नहीं है? 100% सुनते हैं, 100%।
हाँ, नहीं, हाँ, ऐसा हम मानना चाहेंगे। हाँ, बट एक्शंस में हम हमेशा थोड़ा सा ज्यादा सोच के करेंगे, तो फिर ठीक है। हाँ।
तो ठीक है, आज हम लोग किस विषय पे बात करें फिर?
हाँ, तो मैं ये सुन रही थी कि बैंगलोर में पानी की बहुत कमी है, उसके न्यूज तो मैंने सिंगापुर में भी पढ़ लिए। एक तो हमने इस विषय पे पहले भी काफी सारी बातें की है और आपने एक अपने न्यूज़लेटर में एक आर्टिकल लिखा है जिसमें आपने एक फ्रेमवर्क को डिस्कस किया है और उस फ्रेमवर्क के थ्रू इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करी है, तो क्यों ना उस पर ही बात की जाए आज।
जैसा कि आपने कहा, इसके ऊपर हमारा एक सदाबहार एपिसोड है विश्वनाथ के साथ, शायद है अंक नंबर 95, और उसमें तो उन्होंने, वो वाटर एक्सपर्ट है, तो उन्होंने काफ़ी जानकारी दी है। लेकिन मैं इसे एक लोक नीति के दृष्टिकोण से देखना चाहता था कि ठीक है, वाटर एक्सपर्ट्स ने कहा है और वो अब हम जानते हैं क्या प्रॉब्लम है वगैरह, लेकिन इसको हम पब्लिक फिनेंस और पब्लिक पॉलिसी दृष्टिकोण से कैसे देखें, ये मेरे मन में चल रहा था। क्योंकि लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स अगर हमें देखने हैं तो शायद एक और बड़ा फ्रेम चाहिए जो सिर्फ पानी के बारे में बात नहीं कर रहा है। तो जब मैं इसके बारे में सोच रहा था तो मुझे एक फ्रेमवर्क ध्यान में आया जिसे कहते हैं हम विक्सेलियन कनेक्शन। ये पब्लिक फाइनेंस में एक काफ़ी प्रचलित फ्रेमवर्क है और मुझे लगा कि इस फ्रेमवर्क का काफ़ी एप्लीकेशन है इस इशू पे। तो पहले वो फ्रेमवर्क बता देता हूँ और फिर हम लोग देखते हैं कि वो कैसे एप्लीकेबल है बैंगलोर वाटर सिचुएशन पे। तो फ्रेमवर्क का सीधा सीधा पॉइंट ये है कि टैक्स और सार्वजनिक सुविधाएं जो हैं उनके बीच की जो कड़ी है वो बहुत मजबूत होने चाहिए, और मतलब बहुत ही सामंजस्य होना चाहिए इन दोनों चीज़ों में। तो जो आप टैक्स भरते हैं और जो आपके पास सार्वजनिक सुविधाएं आती हैं। अब ये कहने में तो बहुत सिंपल लगता है, लेकिन आपको पता है ये अक्सर होता नहीं है। तो इसे डिपिक्ट करने के लिए आप एक वेन आरेख, मतलब वेन डायग्राम इमेजिन कीजिए जिसमें तीन सर्कल हैं और तीन सर्कल तीन अलग अलग चीज़ों को डिनोट करते हैं। तो एक सर्कल है उन लोगों को डिनोट करता है जो फैसला लेते हैं किसी भी विषय पे, दूसरा सर्कल है वो उन लोगों को डिनोट करता है जो लाभार्थी हैं, those who benefit, और तीसरा सर्कल है जो उन लोगों को डिनोट करता है जो कीमत चुकाते हैं किसी भी पब्लिक पॉलिसी की। ठीक है, तो अगर आप ये तीन सर्कल को इमेजिन करें तो ये फ्रेमवर्क ये कहता है विक्सेलियन कनेक्शन कि इन तीनों सर्कल में जितना ज्यादा ओवरलैप होगा उतनी बेहतर आपको पब्लिक सर्विस डिलीवरी होगी, और जितना कम ओवरलैप होगा इन तीनों चीज़ों में उतनी कमज़ोर सर्विस डिलीवरी होगी और उतना ज़्यादा शायद वेस्ट भी होगा। तो ये तीन चीज़ें, तो आप फिर से ध्यान दीजिए, तीन सर्कल है, एक जो फैसला लेने वाले हैं, दूसरा जो लाभार्थी हैं, और तीसरा जो कीमत चुकाते हैं किसी भी चीज़ की। ठीक है, तो ये अब फ्रेमवर्क है। अब इस दृष्टिकोण से आप कई किसी भी टैक्स पॉलिसी को देख सकते हैं, लेकिन मैं इसको अप्लाई करना चाहता हूँ हमारे जो बैंगलोर की पानी वाली समस्या है उससे जुड़ा। तो अब आप अगर देखें विक्सेलियन कनेक्शन के फ्रेमवर्क के जरिए, तो मुझे लगता है बैंगलोर की अगर आप वाटर सिचुएशन देखेंगे तो आपको बोलना पड़ेगा पूरा विक्सेलियन डिसकनेक्शन है, तो तीनों सर्कल बहुत कम ओवरलैप कर रहे हैं और ये दो लेवल पे एटलीस्ट मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो एक तो पहला देखते हैं जो इनकमिंग वाटर आता है उसको एनालाइज करते हैं। तो पहले तो तकरीबन 50% बैंगलोर का पानी कावेरी नदी से आता है, ठीक है, और ये कावेरी नदी है 90 किलोमीटर दूर शहर से और 350 मीटर कम हाइट पर है, ऊंचाई कम है कावेरी की और बैंगलोर तो एक हिल स्टेशन की तरह। तो एक वेल लैब्स एक नया अनुसंधान केंद्र है, उन्होंने बहुत ही अच्छा रिपोर्ट लाई है इसके ऊपर, तो हम लोग साझा करेंगे इस शो नोट्स में। लेकिन उस रिपोर्ट में उन्होंने अनुमान लगाया था कि आप इमेजिन कीजिए पानी को आप उठा रहे हैं 350 मीटर 90 किलोमीटर, तो इसमें 2-3 पंपिंग स्टेशन है बीच में, तो एक्चुअली वो कहते हैं आप एक लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम कर रहे हो, विश्व का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम मान लीजिए इसे। और उसमें सिटी की जो वाटर सप्लाई एजेंसी है मतलब BWSSB वो 3 करोड़ रुपए प्रतिदिन सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल में पे करती है ये पानी लिफ्ट करने के लिए। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। हाँ। तो और ये कैसे आया ना, तो आजादी के पहले बैंगलोर क्योंकि एक हिल स्टेशन जैसा है ऊपर, तो ये सिस्टम तो था नहीं पानी पहुंचाने का काफी टाइम तक। तो बैंगलोर में बहुत सारे तालाब थे, जैसे कई शहरों में है, भोपाल में है, वैसे ही बैंगलोर में तो काफी प्रचलित है। तो ये सब इंसानी जरिए से बनाए गए हैं, ये मतलब कृत्रिम तौर पे बनाए हैं, प्राकृतिक नहीं है। तो ये बनाए गए थे कि इस हिल स्टेशन जैसे शहर को पानी पहुंचाया जाए। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन और आबादी बढ़ी शहर की, तो फिर लोगों ने सोचा कि यार पानी की जरूरत को पूरा करना है तो क्यों ना हम कावेरी जो 90 किलोमीटर दूर है वहां से पानी खींच के ले आए। और ये बहुत बड़ा इंजीनियरिंग मार्वल था उस समय का, और मतलब काफी गर्व की बात है कि वो इंजीनियरिंग मार्वल पूरा भी हुआ और वो रियलाइज भी हो गया, तो वो तो एक इंजीनियरिंग सक्सेस कहना चाहिए। लेकिन उसकी वजह से और भी कई इफेक्ट्स हुए। तो पहले तो ये लेक मतलब ये पाइपलाइन बन गई, उसके बाद लोगों ने सोचा यार ये तालाब क्यों चाहिए शहर में, क्या फायदा है इनका, एक तो इनसे पहले मच्छर वगैरह वहां पर होते हैं, उसकी वजह से लोगों को डेंगू वगैरह होता है, तो ये लेक्स नहीं चाहिए हमें। तो लेक्स बहुत ही मतलब डिसयूज में आ गए, लोग उसका अच्छे से देखरेख नहीं कर रहे थे, और फिर कंस्ट्रक्शन वगैरह भी हो गया। तो इसीलिए ये एक बड़ा कारण है क्योंकि क्यों लेक्स जो है वो गायब होते चले गए बैंगलोर में, ठीक है। तो ये एक इफेक्ट। दूसरा, जो कावेरी से पानी लाया गया उसके जो नए नए स्टेजेस बनते गए, नए नए एरियाज को पानी प्रोवाइड करने की जो स्कीम थी, उसका पैसा कोई भी मतलब डायरेक्टली नहीं पे कर रहा था, क्योंकि ये जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जो जीका है वो उसके द्वारा फाइनेंस किया जा रहा था, ठीक है। तो मतलब हम लोग पैसा दे ही रहे होंगे ओवर टाइम, लेकिन उस टाइम पे तो ये इफेक्ट वो कोई और पे कर रहा था उसके लिए, तो ये कावेरी का प्लान बढ़ता गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि एक विक्सेलियन डिसकनेक्शन क्रिएट हो गया है ना, क्योंकि जो फैसला लेने वाले हैं वो स्टेट लेवल के पॉलिटिशियन है, बैंगलोर में तो कोई सरकार ही नहीं है जो डिसाइड कर रही थी कि बैंगलोर को पानी कहाँ से आना चाहिए। दूसरा, जिन जो लाभार्थी थे ये कावेरी कनेक्शन से, वो थे जो ओल्ड बैंगलोर के निवासी थे, जहां पर अभी कुछ आईटी इंडस्ट्री वगैरह नहीं है, लेकिन जहां पर लोकल डोमिनेंट एलिट्स जो थे वहां पे वो लोग लाभार्थी हुए। और जो पैसा जो कीमत चुकाया वो पूरे जो कीमत चुकाई वो पूरे राज्य के निवासियों ने चुकाई ये जीका लोन्स को अपने टैक्स के द्वारा सर्विस करने में। तो इस तरीके से आप देखेंगे लाभार्थी अलग है, जिसने पे किया वो अलग है, और जिसने डिसाइड किया वो भी अलग है। तो ये एक विक्सेलियन डिसकनेक्शन क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे मैं रुकता हूँ, आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में?
और ये डिसकनेक्शन में थोड़ा और भी कॉन्ट्रास्ट ये भी है ना कि हो सकता है कि वो नॉर्थन कर्नाटका के कुछ और गरीब एरिया में से जो टैक्स जा रहा है, एक तरीके से स्टेट लेवल का टैक्स, वो अब जाके एक इलीट पैसे वाली जगह को पैसा जा रहा है। मतलब एकदम तो हम नहीं कह सकते, बट एग्रीगेट लेवल पे भी पानी वैसे हो रहा है। मतलब पानी का पैसा जो है उसका जो कीमत है, जिसको लाभ मिल रहा है उसको नहीं पे करना पड़ रहा है, जबकि ऐसे किसी को लेना पड़ रहा है जो शायद उनसे भी और गरीब होगा।
नहीं नहीं बिल्कुल ये ठीक बात है ख्याति, क्योंकि इसका एस्टिमेशन भी किया था अनुपम ने किया था हाल ही में, कि एक आप आम घर को देख लीजिए, एक हाउस होल्ड, चार लोगों का हाउस होल्ड, तो उनका मंथली वाटर बिल आता है 172 रुपए औसतन तौर पे, और जबकि सिटी की जो वाटर पंपिंग एजेंसी है उसको उतना ही पानी पंप करने में 1248 रुपए से लेकर 1560 रुपए लगते हैं। तो मतलब जिन लोगों को पानी मिल रहा है उनको 80% की सब्सिडी मिल रही है।
और यूजुअली ये देखिए कि अक्सर हमारे यहाँ पे इस तरीके की, हिंदुस्तान में बहुत सारी सब्सिडीज हैं, जैसे दिल्ली मेट्रो पे लोगों को बड़ा नाज था पर उसका पैसा पूरे हिंदुस्तान के टैक्स पेयर्स ने पे किया था, ये थोड़ी है कि सिर्फ दिल्ली के लोग उसको पे कर रहे थे। और ज्यादातर मेट्रो इसी तरह से हिंदुस्तान में ज्यादातर मेट्रो है वो मतलब गरीब लोगों के पैसे से अमीर लोग मेट्रो में सफर करते हैं एक तरह से, ठीक है। तो ये भी इसी तरह से अगर तो इसमें एक कंट्रास्ट भी देखना चाहिए, क्योंकि प्रणय ने बताया कि किस तरह से ये टूटा हुआ है कनेक्शन, अगर होना चाहिए था तो असली में। और एक्चुअली कावेरी वाटर का बैंगलोर में बड़ा ब्रांड है, उसको बड़ा प्रीमियम माना जाता है, लोग उसको अच्छा मानते हैं। तो अगर BWSS भी बोलता है कि भाई आपको कावेरी वाटर का कनेक्शन मिलेगा और आपको इतना पैसा उसका देना पड़ेगा जो कि नॉर्मल से ज्यादा होगा, तो शायद लोग दे भी देते। लेकिन यही है कि वो जो एलीट है वो पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर सकती है, उन लोगों को कभी कभी पॉलिटिशियन को ये भी दिखाना चाहते हैं कि देखो हम सबको इतना दे रहे हैं तुमको भी ये दे दिया, सबको कुछ ना कुछ बांटना है। तो लेकिन आप जब अमीर लोगों को कुछ बांटते हैं तो उनका कंजम्पशन इतना हाई होता है ना, गरीब लोग उतना कंज्यूम नहीं कर सकते, अमीर लोग तो बहुत कंज्यूम कर सकते हैं। ये तो एक तरह से पेट्रोल या डीजल पे आप सब्सिडी दे दीजिए तो फिर तो अमीर लोग जो है वो खा जाएंगे गरीबों को।
और खासकर पानी तो जो अमीर इंसान के पास बड़ा घर होगा गार्डन होगा, तो हमारे यहाँ पे तो वही पानी सब लोग गार्डन में छुट्टा डालते हैं, कोई इतना सोचता नहीं है कि मुझे कितना बिल पे करना पड़ रहा है, क्योंकि बिल तो भरना पड़ता है पर वो बहुत ही मामूली अमाउंट होता है।
कार धोने के लिए यूज हो रहा है, गार्डनिंग के लिए भी यूज हो रहा है, तो ये घर भी पड़ा है तो उसके अंदर साफ सफाई में भी ज्यादा खर्च होता है। पीने का तो पानी बहुत ही कम लगता है इंसान को, पीने का पानी में इतनी प्रॉब्लम नहीं है। वॉशिंग मशीन यूज होती है जो कि हाथ से कपड़े धोने से ज्यादा पानी इस्तेमाल करती है, तो हर चीज में पानी ज्यादा लगता है।
नहीं नहीं वॉशिंग मशीन तो कम इस्तेमाल होता है पानी का, अच्छे से हाथ से धोना है तो।
अनाड़ी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लोग काफी काफी हाथ से धोने वाले लोग काफी किफायत से पानी यूज कर लेते हैं।
अच्छा ये डिबेट में ना पूरी सॉल्व नहीं कर पाई क्योंकि मैं ये हमेशा ये सुनती रहती हूँ दोनों साइड वाले ऐसे ही बोलते हैं और मुझे उसका कोई कंक्लूसिव एविडेंस दोनों में से एक साइड का नहीं मिला है।
हाँ। नहीं, जितना मेरे को समझ में आता है कि छोटे स्तर पे आप हमेशा पानी वेस्ट करेंगे, अगर आप इंडस्ट्रियल लॉन्ड्री बनाएंगे जहाँ पे आप वाटर रिसाइकिल कर सकते हैं फिर तो अलग बात है, लेकिन आप जब घर पे करेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल है, तब तो पानी वेस्ट होगा ही हो।
अच्छा ख्याति आप बताइए कि सिंगापुर में कैसे होता है पानी का और किस तरीके का बिल आता है, अप्रोक्सीमेटली एवरेज औसतन तौर पर बताइए।
हाँ तो ये सवाल आपने पूछा तो इसलिए मैं अपना बिल थोड़ा सा देख रही थी, तो मैं देख रही थी लगभग मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल का 1/4 भाग वाटर सर्विसेज पे जा रहा है, मतलब समझिए भारत के हिसाब से अगर देखेंगे तो 2000 का बिल इलेक्ट्रिसिटी का और 500 लगभग पानी का, तो मतलब ठीक ठाक अमाउंट है, इतना भी कम नहीं है। मतलब लोग यहाँ सोचते हैं कि अरे ज्यादा पानी, क्योंकि हमें पता है कि पानी पे बिल लगता है तो सब लोगों के दिमाग में रहता है कि पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए, पानी का एक ये बिलिंग होती है, तो आप कहीं पे भी टैप अगर गिर रहा होगा तो लोग पहले उसे बंद करवा देंगे क्योंकि वरना तो आप बिल पे कर रहे हो उसके लिए, तो ये चीजें तो है। दूसरा सिंगापुर में खुद ही पानी बहुत कम है क्योंकि एक छोटा आइलैंड है और बारिश तो होती रहती है, तो उन्होंने बहुत सारे रिजर्वॉयर्स बनाए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उन्होंने धीरे धीरे यहाँ कितने रिजर्वॉयर्स हैं उनको बढ़ाए हैं और उनको बस पानी अपनी खुद की स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाई ये भी कर रहे हैं, हालांकि फिर भी बहुत बड़ा प्रतिशत एक हिस्सा उनका मलेशिया से आता है, पर वो डिपेंडेंसी भी वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उससे कम करना चाहते हैं, तो इस हिसाब से फिर वो दूसरा एक उसमें और तरीका ये होता है कि बहुत सारा रिसाइकल्ड वाटर और न्यू वाटर का यूज होता है। रिसाइकल्ड वाटर की आपका जो ड्रेनेज में से पानी जाता है वो रिसाइकल होके गार्डनिंग के लिए यूज हो और स्विमिंग पूल वगैरह जगहों के लिए यूज हो, और न्यू वाटर का फंडा है कि बहुत सारा जो हमारा पानी एक्चुअली बाहर जाता है वो पूरा प्रोसेस होके उसमें से वो वापस एक ड्रिंकिंग वाटर ही बना देते हैं, न्यू वाटर प्लांट उसको बोलते हैं, और फिर वो रिजर्वर में ऑलमोस्ट लाइक अ ड्रिंकिंग वाटर बना के उसे छोड़ते हैं। ये उनका ये भी एक है। तो उन्होंने बहुत तरीके से, तीन चार अलग अलग तरीकों से पानी को कैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जाए वो भी करते हैं। और बहुत सारी पब्लिक प्लेसेस में भी उन्होंने, मतलब ऑफिस वगैरह में भी कुछ फंडे हैं, क्योंकि मुझे पता है जब जब कोविड आया था ना, तो उन्होंने एक, मुझे याद है एक आर्टिकल आया था कि उनको ये डर था कि अब लोगों का पानी का कंजम्पशन बढ़ जाएगा, क्योंकि जब लोग वॉशरूम अपने ऑफिस में जाते हैं तो वहां पे सब जगह पे बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड वॉशरूम्स बने हुए हैं, तो उसमें पानी बचेगा। और अब जब सब लोग अपने घरों में वॉशरूम ज्यादा जाएंगे, तो क्योंकि घर का तो किसी को कोई नहीं रेगुलेट कर सकता है, तो वहां पे तो ज्यादा यूज होगा। तो उनका एक ये एस्टिमेट था कि अब जैसे ही लोग अपने घर से काम करने लगे हैं तो हमारी पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, ये एक उनका सोचना था। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारे लेवल्स पे इस यूज को भी बेहतर करा जाए कि कम से कम यूज में ज्यादा से ज्यादा उसमें से हम पानी यूज कर पाए उसको।
हाँ, कोई अच्छी बात बताई हमने। तो तकरीबन एक चौथाई हिस्सा इलेक्ट्रिसिटी बिल का आपका, आपने बोला पानी में जाता है, जबकि बैंगलोर में शायद वही नंबर 1/10 होगा, तो अप्रोक्सीमेटली, तो इतना गैप है, उसे बढ़ाना चाहिए। खैर, तो ये एक चीज थी। तो दूसरी एक और जो लूप है ये विक्सेलियन डिस्कनेक्शन की, वो भी मैं बताना चाहता था। तो 50% हिस्सा तो हम लोगों ने बात कर ली, कावेरी से आता है, बाकी 50% हिस्सा शहर का आता है भूजल से, ग्राउंड वाटर से। तो लोग बोरवेल हैं, बोरवेल या तो टैंकर से आता है या खुद के बोरवेल हैं और वहां से पानी एक्सट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब ये बोरवेल ज्यादातर कहाँ है, ये उन जगहों में जो कि शहर के नए हिस्से हैं, और ये नए हिस्से वो भी हैं जहां पर नए अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है, टेक्नोलॉजी पार्क है, वगैरह वगैरह। तो ज्यादातर बैंगलोर को जो हम लोग कहते हैं ग्लोबल सिटी, वो इन नए हिस्सों की वजह से है। तो और यही हिस्सों से बैंगलोर का ज्यादातर प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह भी आता है, क्योंकि यहीं पर ज्यादा नए बड़े अपार्टमेंट्स हैं वगैरह और कॉरपोरेट्स भी हैं, तो वहीं से प्रॉपर्टी टैक्स ज्यादा आता है। जैसे महादेवपुरा एक वार्ड है, वहां से काफी ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन होता है, क्योंकि वहां पर काफी सारे बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं और अपार्टमेंट्स हैं, है ना। तो ये लोग हैं जो काफी पे कर रहे हैं, तो ये है जो कीमत चुका रहे हैं सिटी के टैक्सेस के लिए। लेकिन इन लोगों को पानी मिलता ही नहीं है शहर की एजेंसी से, तो जो BWSSB है। हाँ, और एक और है, इन सब जगहों को, नए एरियाज में इन लोगों को वाटर ट्रीटमेंट करना भी कंपलसरी होता है। तो जैसा ये वेल लैब्स रिपोर्ट से ही मुझे पता पड़ा कि बैंगलोर में विश्व के सबसे ज्यादा विकेंद्रित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, विश्व के सबसे ज्यादा, मतलब क्योंकि कुछ 2000-3000 ऐसा कुछ नंबर था, क्योंकि हर, उन्होंने बहुत पहले से ये लागू कर दिया था कि हर अपार्टमेंट साइज एक बड़ा कुछ थ्रेशोल्ड है, उससे बड़ा हो तो जरूरी है, आपको STP लगाना जरूरी है, और ये हो भी गया। तो STP है, तो लोग STP लगाया, लोग उसकी कीमत दे रहे हैं, लेकिन उनको पानी नहीं मिल रहा है उसकी वजह से। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था। और एक तो ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट है, उनको रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी करना पड़ता है, तो ये भी कंपलसरी है। और तीसरा, ये जो ट्रीटेड पानी है उसको अपने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के बाहर भी नहीं छोड़ सकते, तो ये तीनों तरफ से मतलब त्रिशंकु है उनके लिए, तो बहुत ही मुश्किल है। तो एक है, तो खैर ये तीन कॉस्ट है उनकी, लेकिन इनको पानी नहीं मिलता शहर के गवर्नमेंट से। और जो इनफैक्ट जो शहर की गवर्नमेंट है वो ये टैक्सेस, बैंगलोर के टैक्सेस यूज कर रही है कावेरी वाटर सब्सिडाइज करने में, जो कि जा रहा है ओल्डर एरियाज ऑफ बैंगलोर को। तो ये भी एक फिर से एक विक्सेलियन डिस्कनेक्शन खड़ा हो गया कि जो लाभार्थी हैं वो बहुत अलग हैं और जो इसकी कीमत अदा कर रहे हैं वो एक अलग ग्रुप है। तो ये एक दूसरा डिस्कनेक्शन है। इसके ऊपर आप क्या कहते हैं?
इसमें मैं एक और चीज जोड़ दूं ना, ये तरीके की चीज हिंदुस्तान में काफी जगह पे होती है, जहां सरकार खुद कुछ कर नहीं सकती तो वो इंडिविजुअल्स को चीज करनी पड़ती है बहुत ही। अब जैसे आप सोच सकते हैं कि सीवेज ट्रीटमेंट पंप अगर आप सेंट्रलाइज लगाएं तो बहुत एफिशिएंट और बहुत बड़े, उसकी एनर्जी एफिशिएंसी भी, ट्रीटमेंट एफिशिएंसी सब बेटर हो सकती है कंपेयर टू कि अगर आप हर घर में करें। जैसे हिंदुस्तान में खासकर अपार्टमेंट्स में, क्योंकि ग्राउंड वाटर लेते हैं, ऑलमोस्ट हर घर अपने घर में आरओ प्लांट लगा लेता है छोटा सा एक तरीके का, ठीक है। तो आप अगेन हर घर में आप रिवर्स ऑस्मोसिस कर रहे हैं पानी का, तो वो
उसकी एफिशिएंसी भी कम होती है, मतलब आप बहुत सारा पानी वेस्ट करेंगे और जो वेस्ट वाटर आउटपुट होता है आरओ से वो भी बहुत बेकार होता है, वो बाहर जाके और चीजों को गंदा भी करेगा। तो ये दोनों चीजें हम करते हैं, जबकि मुझे सिंगापुर का तो पता नहीं, आई थिंक वहां पे आप नल खोल के कहीं भी शायद पानी पी सकते होंगे, राइट ख्याति? तो आप क्योंकि आप सेंट्रलाइज जगह पे पानी साफ करके भेजिए तो लोग भरोसा कर सकते हैं ना पानी पर, पर हम वो भी नहीं करते। तो ये मैं एक और चीज जोड़ना चाहता था पानी से रिलेटेड।
और इतने सारे डिसेंट्रलाइज्ड एसटीपी क्या काम भी कर रहे हैं, उतने में कितने फंक्शनल होंगे कितने फंक्शनल नहीं होंगे?
नहीं, ये तो काम करते होंगे ख्याति, मतलब ज्यादातर मैं जिन अपार्टमेंट्स को जानता हूँ, क्योंकि वो नहीं काम करे तो उनका काम ही ना चले ना, क्योंकि अच्छा। आपका पानी का आउटपुट उसी में जाता है। अब ये है कि उनकी क्वालिटी कितनी अच्छी है उसमें, लेकिन वो नहीं होगी वहां पे, कोई डिस्कनेक्ट नहीं है क्योंकि उसके यूजर्स अक्सर उसी अपार्टमेंट के लोग होते हैं, और अगर कुछ गड़बड़ होगी तो वो लोग हल्ला मचाएंगे, ठीक है, आपके पानी में स्मेल आने लगेगी फ्लश वगैरह के, क्योंकि अक्सर वो पानी ट्रीट होके वापस आपको गार्डन सर्विसेज के लिए और फ्लशिंग के लिए आपको वापस मिल जाएगा वो पानी। तो अगर आपको उस पानी में गंध आएगी या फिर आपको अपने गार्डन में बाहर घूमते हुए गंध आएगी तो सब लोग चिल्लाएंगे, फटाफट ठीक हो जाएगा वो।
तो जब एसटीपी भी चल रहे हैं और रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी हो रहा है, तो फिर यहाँ इन एरियाज में तो ग्राउंड वाटर लेवल थोड़ा इम्प्रूव तो नहीं होना चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? इस समय तो शायद बारिश की कमी रही है, इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा है।
दो तीन दिक्कतें हुई ना ख्याति, बारिश की कमी भी हुई और एक ग्राउंड वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग से बनता है, और जो हमारे ताल हैं बड़े बड़े बैंगलोर के, वो एक तरह से बड़े बड़े रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम करते हैं, तो वो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते रहते हैं। तो वो जो पानी है, एक दो लेक्स भी जो है हम लोगों ने डिसिल्ट कर दी साथ में, और बारिश भी बहुत समय से अब नहीं, तो बारिश पे तो हमारी निर्भरता थोड़ी बहुत है ही बैंगलोर की नीचे रिचार्ज करने के लिए। तो ये मेरे ख्याल से बहुत रेयर है कि इतने समय से, और गर्मी इतनी ज्यादा है और बारिश का कोई दूर दूर तक सब काले मेघा हो रहा है यहाँ पे।
तो हाँ ख्याति, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है और एसटीपी है, लेकिन शायद फिर भी एक्सट्रैक्शन ज्यादा होगा कंपेयर टू, क्योंकि और कोई स्रोत नहीं है ना यहाँ पर, और ज्यादातर ग्रोथ यहाँ पर हो रही है इन एरियाज में, तो शायद वो मिसमैच है अभी भी। ठीक है, ये तो हम लोगों ने प्रॉब्लम्स की बात करी, लेकिन इस फ्रेमवर्क का की एक स्ट्रेंथ ये है कि इसकी वजह से आप कुछ सॉल्यूशन भी सोच सकते हैं। तो ठीक है, तो अगर आप इस फ्रेमवर्क को सोचे कि जितना ज्यादा आप ओवरलैप बढ़ाएंगे इन तीन सर्कल में, उतना ज्यादा आपको बेहतर आउटकम मिलेगा। तो अगर आप उस दृष्टिकोण से देखें तो मुझे लगता है आप तीन चीजें कर सकते हैं। एक तो साधारण है, आप यूजर फी बढ़ाइए वाटर यूजेज पे, जितनी यूजर फी बढ़ेगी उतना लाभार्थी और जो कीमत चुकाने वाला है उस सर्कल्स में ओवरलैप बढ़ जाएगा, है ना? तो ये इतनी ज्यादा जो सब्सिडी मिल रही है उसका कोई लॉजिक नहीं है, ये सिर्फ कुछ रेजिडेंट्स बैंगलोर के एंजॉय कर रहे हैं, और मतलब ओवर टाइम इस सब्सिडी को फेज आउट कर देना चाहिए। हर बैंगलोर के निवासी को पता होना चाहिए कि उनको 80% सब्सिडी मिल रही है अगर आप कावेरी का वाटर यूज कर रहे हैं तो, और वो 80% सब्सिडी 5-10 साल में आप 0% हो जानी चाहिए, तभी एक वो सर्कल का ओवरलैप आप बढ़ा सकते हैं। दूसरा, मुझे लगता है कि बैंगलोर का जो कावेरी से एक्सट्रैक्शन है पानी का बैंगलोर के लिए, वो भी 1-2 दशक काल के दौरान कम कर देना चाहिए, एटलीस्ट स्टेबलाइज कर देना चाहिए। अब शायद कम तो नहीं हो सकता क्योंकि बैंगलोर तो ग्रो करेगा और बैंगलोर का ग्रो करना भारत के लिए बहुत जरूरी है, तो आप शायद जीरो तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये एक जरूरी चीज होनी चाहिए कि आप उसे और बढ़ाएंगे नहीं जितना है आज के, और अगर एक्स्ट्रा आपको रिसोर्सेज चाहिए तो वो बैंगलोर के अंदर क्रिएट करने पड़ेंगे, क्योंकि ये डिस्कनेक्शन क्रिएट हो जाता है। अगर कावेरी से आ रहा है तो यहाँ पे क्यों कुछ करना है, सिर्फ कावेरी से और पानी लाओ और नए जीका से लोन लो और नए फेजेस बना दो, तो इसीलिए फेजेस चलते रहते हैं, कावेरी फेज 3, फेज 4, फेज 5, और वो मतलब बेधड़ल्ले से प्रॉमिस भी कर देता है कि आपको 2047 में मिल जाएगा कावेरी वाटर कनेक्शन।
मैं पढ़ रही थी न्यूज़ में, कहीं तो लिखा था कि अभी फेस 5 आएगा, जो वो एस्टिमेट कर रहे थे कि 2030 या 2045 तक चलेगा, लेकिन शायद अभी उनका एस्टिमेट है कि 2029 तक काम करेगा फेस 5।
तो ये रुकना चाहिए। अब हम लोग एक्सटर्नलाइज नहीं कर सकते बैंगलोर की प्रॉब्लम, क्योंकि वो भी है कि वहां के लोगों को नहीं मिल रहा पानी, है ना, हम लोग यहाँ ले आ रहे हैं, और तो ये अगर हम लोग एटलीस्ट प्रॉमिस करेंगे कि स्टेबिलाइज करेंगे तो इंसेंटिव बनेगा कि यहाँ पे हम लोग और पानी स्टोर करने के लिए बेटर यूटिलाइज करने के लिए इंसेंटिव्स क्रिएट होंगे, नहीं तो कुछ बदलेगा नहीं उस वजह से। तो ये दूसरा सुझाव है। और तीसरा सुझाव ये है कि शहर को अगर नए एरियाज इनकॉर्पोरेट करने हैं शहर की बाउंड्री में, तो तब तक नहीं करना चाहिए वो जब तक वाटर सप्लाई एजेंसी जो है वो ये कैपेसिटी निश्चित कर पाए कि वो लोगों को, वहां के लोगों को पानी देगी, चाहे वो ग्राउंड वाटर से हो या लेक से हो या टैंकर से हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो अश्योरेंस और वो एनालिसिस होनी चाहिए। नहीं तो शहर को बढ़ने दो लेकिन उस शहर को आप बैंगलोर मत कहिए, बैंगलोर के बाहर लोग रहेंगे, रहने दो, वो और कोई चीजें ढूंढ लेंगे। लेकिन अगर आप कह रहे हैं ये बैंगलोर के सिटी लिमिट्स में आती है तो आपको एटलीस्ट ये अश्योरेंस चाहिए कि वाटर सप्लाई एजेंसी कैपेसिटी डेवलप कर पाए पानी प्रोवाइड करने के लिए। तो ये भी अगर आप करेंगे तो जो सर्कल्स का ओवरलैप है वो बढ़ जाएगा।
मतलब अगर शहर को ग्रो करना है तो पहले उसको अपने अपने रिसोर्सेस जुटाने पड़ेंगे या उसका इंतजाम पहले करना पड़ेगा, और जो लोग रह रहे हैं जो वो पानी जिनको मिलेगा उनको उतना ही उस हिसाब से पैसा देना पड़ेगा, तब जाके एक ये ओवरलैप पूरा कंप्लीट होगा। तो आई थिंक सबको ज्यादा फायदा भी होगा उसी में।
हाँ बिल्कुल।
इसमें प्रणय मैं तुम्हारे सिर्फ दूसरे वाली चीज से थोड़ा सा मतभेद रखता हूँ कि कावेरी से जो पानी नहीं लाना है, मुझे लगता है कि कावेरी का पानी तो खैर बहुत लोग यूज करते हैं और मतलब मुझे लगेगा जैसे हम आसपास में गन्ना इतना उगाते हैं बैंगलोर के, ठीक है, बैंगलोर और मैसूर के बीच में, और लोगों और मेनली हमको बैंगलोर में पानी चाहिए किस लिए होता है, पीने के लिए। तो इंसान के जो हाउस होल्ड नीड्स का पानी है वो खेती से बहुत कम होता है, लगभग 2-4%। ओके okay, मतलब ऐसा भी नहीं है कि आधा वाधा होता है, मतलब वो खेती खासकर गन्ने वन्ने की खेती तो बहुत ही ज्यादा एकदम पानी पे भारी होती है। तो मैं तो बोलूंगा अगर हम ओवरऑल सोचें कि पानी को हम कैसे यूज करना चाहते हैं तो कावेरी के पानी को बैंगलोर में लाना हमारे लिए बेटर है बजाय इसके कि बीच में हम गन्ने की खेती करें। अगर बैंगलोर के लोग गन्ना किसानों को आजीवन पेंशन भी दे दें तो भी वो पानी हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। हमारे टैक्सेस से अगर बोलते हैं कि चलिए भाई वहां के गन्ना किसानों को, यार आप गन्ना उगाना बंद करो, आपको हम खाली बैठे रहने की पेंशन दे देते हैं, या फिर आप कोई दूसरी क्रॉप ले लो, अगर उसमें आपकी आपको कम पैसे मिल रहे हैं गन्ने से तो हम आपके लिए कुछ कर देंगे उसके लिए, लेकिन आप इतना पानी मत यूज करो। तो अपने हाँ। आप हम लोग उससे ज्यादा पानी, तो ये सिर्फ आइसोलेशन में हम नहीं देख सकते कि सिर्फ एक ही जगह, अब नदी तो है और ठीक है 90 किलोमीटर है, डिस्टेंस हाई है, लेकिन बिजली का बिल देना पड़ता है तो इसमें क्या दिक्कत है? अगर पैसा है तो हम, वो भी तो एक संसाधन है। ये मैं मानता हूं कि हमको उसको सब्सिडाइज नहीं करना चाहिए, जो यूज कर रहा है उसको पे करना चाहिए। पर अगर आप पे कर रहे हो और आप बिजली का बिल देने को रेडी हो तो हमको देखना चाहिए कि भाई हम क्यों और पानी पंप नहीं कर सकते, सिर्फ कावेरी से ही क्यों करें? इनफैक्ट मान लो वो एक ही नदी पर डिपेंडेंस है तो मैं बोलूंगा कि दो नदी से लाना चाहिए पानी, क्योंकि आप एक तरीके की अपने लिए बैकअप बनाना चाहते हो। तो उस तरह से सोचना चाहिए कि भाई मेरा एक प्राइमरी सोर्स है, सेकेंडरी है, टर्शरी भी है ना, कि पानी के बिना तो आप रह नहीं सकते, तो पानी के लिए तो आपको 2-3 हो तो अच्छा है। तो आपके खुद के ताल भी होने चाहिए जो आपके पास रिजर्वायर है, और आपको एक बोल के रखना चाहिए कि मैं 1 साल का पानी तालों में रखूंगा, ताकि 1 साल भी कुछ हो जाए, कोई मान लो पाइप कट जाए, कुछ हो जाए, बहुत कुछ हो सकता है, बीच में कोई भूकंप आ जाए जिसकी वजह से पाइप काम नहीं कर रही है, कावेरी नदी में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो चलो हमारे पास 1 साल का पानी है ताकि हम तब तक दूसरा कुछ जुगाड़ कर ले। लेकिन मीनवाइल हमारे पास में 2 बैकअप भी होने चाहिए कि भाई ये कावेरी से भी पानी आ रहा है और एक में भी कहीं और किसी और नदी से भी हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए पानी लाने की। तो मैं तो थोड़ा सिस्टम डिजाइन पर्सपेक्टिव से तो मैं इस तरह से सोचूंगा इस प्रॉब्लम के बारे में।
काबिनी से भी पानी आता है शायद बैंगलोर में, काबिनी नदी से, बट वो बहुत
बगल में है। काबिनी जो है वो कावेरी की ही ट्रिब्यूटरी है।
अच्छा,
पर सौरभ ये अच्छा पॉइंट है, लेकिन एक पहले पॉइंट पे आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि उसका अल्टरनेट यूज वही है जो अभी हो रहा है, क्या पता अगर मतलब मैं ये थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि वो पानी आप गन्ने उगाने में ग्रो करे, उसका बेटर यूज हो सकता था। मैसूर में फाउंड्री आने वाली थी, फाउंड्री नहीं है। एक कारण ये भी कहा जा रहा था क्योंकि नर्मदा का पानी गुजरात बहुत चीप में देने के लिए तैयार था। तो ऐसे कई सारी चीजें हो सकती है जो नहीं हो रही होंगी क्योंकि वहां पर नहीं है, तो एक वो पॉइंट। और दूसरा मैं आपसे अग्री करता हूँ कि ऑल्टरनेट सोर्स होने चाहिए। जैसे वेल लैब्स के रिसर्चर है, उनको मैंने ये सवाल पूछा था तो उन्होंने बोला था एक क्लाइमेट चेंज का भी नजरिया है कि क्लाइमेट चेंज क्योंकि हो रहा है तो आपको मल्टीपल सोर्सेस देखने चाहिए, ऐसा ही नहीं रहे कि आप सिर्फ बैंगलोर में ही रहें। तो वो ठीक है, उससे मैं इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन मैं फिर से पॉलिटिकल इकोनॉमी के दृष्टिकोण से देख रहा हूँ। आपको इंसेंटिव डेवलप ही नहीं होगा स्टोरेज डेवलप करने का अगर आपको पता है कि और आप दो और चीजों से ले आप।
नहीं, आपको इंसेंटिव डेवलप होगा अगर आप प्राइसिंग ठीक से करोगे तो, क्योंकि आपको आपका जो लोकल पानी अगर आधे दाम में मिल रहा है और कावेरी से आने वाला पानी आधा, क्या और भी कम होगा ना, क्योंकि बिजली का बिल बहुत ज्यादा है। BWSSB में ये तो मुझे किसी ने 20 साल पहले भी बोला था और वो आज भी ट्रू होगा, सबसे बड़ा इलेक्ट्रिसिटी बिल किसी एंटिटी का है तो वो वाटर डिपार्टमेंट का इंडिया में, बैंगलोर में, ठीक है। तो आप अगर वो पूरा वो इलेक्ट्रिसिटी बिल लोगों के ऊपर डालते हो तो आप बोल सकते हो लोगों को, अगर आप अपने इसके लिए आपको बोरवेल के पानी में भी मीटर लगाना पड़ेगा। अभी बोरवेल का पानी तो फ्री में मिलता है ना आपको, तो अगर आप उसको मीटर कर दो तो फिर आप बोल सकते हो, और या फिर आप लोकल पाइपिंग भी कर सकते हो लेक्स के पानी से, और आप बोल सकते हो कि भाई जो बैंगलोर का लोकल पानी है वो आपको 1/3, 1/4 प्राइस पे मिलेगा, और कावेरी पानी प्रीमियम पानी है भैया, वो आपको 4 गुना पैसा देना पड़ेगा। अपने आप सारे इंसेंटिव ठीक हो जाएंगे।
अगर हम लोग उस तरीके की प्राइसिंग कर पाए तो शायद ये करने की जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट मैं मानता हूँ।
मुझे एक सवाल था प्रणय के लिए कि जो आपने ये फ्रेमवर्क बताया कि जिसको लाभ होता है जो इस पे पैसा खर्च करता है और जो निर्णय लेता है कि वो पैसा कैसे खर्च किया जाएगा, राइट, वो तीनों में एक तालमेल होना चाहिए, पर क्या ये सिर्फ कुछ प्रकार के टैक्स पे लागू होता है कि हर प्रकार के टैक्स पे लागू होता है या हर प्रकार के टैक्स पे लागू होना चाहिए? क्योंकि कुछ चीजों में तो हम देखते हैं ना कि थोड़ा बहुत तो शायद रिडिस्ट्रीब्यूशन चाहिए होगा ना, कि देश के कुछ हिस्से होंगे जिनके पास अपनी कैपेसिटी नहीं होगी उतना टैक्स रेवेन्यू जनरेट करने की, लेकिन हम उनको भी कुछ हिस्सा ज्यादा देंगे ताकि वहां पे भी एक बेसिक नेसेसिटीज तो मिले। तो इस चीज को मैं हम किस तरह से समझ सकते हैं कि ये फ्रेमवर्क किस प्रकार के टैक्सेस के लिए शायद है ठीक या किस पे नहीं?
हाँ बिल्कुल, तो ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि रीडिस्ट्रीब्यूशन तो रियलिटी है, वो कम नहीं हो सकता। और ये फ्रेमवर्क ज़्यादातर लोकल सर्विसेज के बारे में जब हम लोग सोचते हैं तब एप्लीकेबल होता है। तो जैसे आप देख लीजिए, इस फ्रेमवर्क से आप अगर सोचेंगे तो आप बोलेंगे कि ज़्यादातर इसका नतीजा ये आता है कि जहाँ भी पॉसिबल हो यूज़र फीस होनी बहुत ज़रूरी है। आप टैक्सेस पे रिलाय करने से ज़्यादा यूज़र फी हर चीज़ पे होनी चाहिए। तो इसलिए पार्किंग यूज़र फी होती है, वो भी इस फ्रेमवर्क से जस्टिफाई हो जाती है। या फिर टोल फी भी होती है कभी कभी, वो भी जस्टिफाई हो जाती है। तो ज़्यादातर अगर आप मतलब जो संसाधन की कमी है उसका आप अगर प्रयोग कर रहे हो तो उसकी आपको कीमत भी देनी पड़ेगी, ये फ्रेमवर्क वो कहता है। तो कई सारे लोकल सर्विस जैसे पानी, आप सिंगापुर में भी पानी दे रहे हैं, वो एक्चुअली सिंगापुर गवर्नमेंट फ्री में दे सकती थी आपको, सिंगापुर गवर्नमेंट के पास इतना पैसा होगा, लेकिन फिर भी वो नहीं देंगे क्योंकि उससे बिहेवियर डिटरमिन होता है। क्योंकि अगर आपको फ्री होगा तो आप पता नहीं उसका क्या यूज करोगे, है ना। तो इसीलिए ये यूजर फी अलाइनमेंट बहुत जरूरी होता है। तो कोई भी आप लोकल सर्विस दे दो जो पब्लिक सर्विस गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, उसमें आपको सोचना चाहिए कि उसे प्राइसिंग करना है या नहीं। और इस फ्रेमवर्क के नजरिए से आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हर चीज की प्राइस तो होनी चाहिए। उसके बाद आप सब्सिडी मतलब आप इनकम ट्रांसफर कर दो या और कुछ कर दो, अगर आपको गरीब तबके के लोगों को सहायता देनी है तो वो आप और तरीके से कर दो, लेकिन अगर आप एक संसाधन को सप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए यूजर फी जरूर लगाना जरूरी होता है।
ठीक बात है।
इसमें ख्याति मैं बस एक चीज ऐड करूंगा कि जनरली रीडिस्ट्रीब्यूशन अगर अमीर से गरीब की तरफ हो तो ठीक है ना, लेकिन गरीबों से पैसा लेके अमीरों को नहीं यूज करना चाहिए, ये तो थोड़ा सा बहुत गलत काम है।
नहीं, ये इसलिए मैंने सवाल पूछा, नहीं क्योंकि हमारे यहाँ पे एक कॉमन डिस्कोर्स में ये बोला जाता है ना, मैं इतने टैक्स देता हूँ लेकिन मुझे सड़कें नहीं मिलती। हम पर मतलब गरीब इंसान भी टैक्स देता है क्योंकि वो भी जब कंजम्पशन करता है तो टैक्स देता है, तो कभी कभी उसमें उलझ ना जाए लोग, थोड़ा सा समझ में आए तो मैं अपना भी डाउट उस हिसाब से क्लियर कर लेती।
नहीं, हमारे हिंदुस्तान में बहुत जगह है जहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं गरीब से अमीर पे, और अमीर लोग बिल्कुल उसको नजरअंदाज कर सकते हैं, करते हैं। फ्री पार्किंग उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि आप इतनी महंगी 50 लाख की गाड़ी लेंगे, लेकिन उसके बाद में आप सड़क तो सबकी है, सार्वजनिक है, और आप फ्री में आप वहां पार्क करना चाहते हैं। तो खत्म करते हैं आज की डिस्कशन, बहुत बढ़िया। आई थिंक प्रणय ने फ्रेमवर्क एकदम जीवंत एग्जाम्पल के साथ समझाया, जो कि आज के प्यासी जनता को समझ में आ गया होगा। तो हम इसी बात पर आज की पुलियाबाजी खत्म करते हैं। हमारे श्रोता हमको बताएं आपको कैसी लगी, आपको कुछ लगा इसमें हमारे आर्गुमेंट्स में कोई तोड़ मरोड़ तो बताइए, कहीं पेज फंस गया है तो बताइए। ख्याति ने बताई, सब्सक्राइब पे आप मैसेज लिख सकते हैं, हमको कमेंट छोड़ सकते हैं, तो इंतजार रहेगा आपके मैसेजेस का।
धन्यवाद। जो 100% श्रोता हमारे साथ हैं उनके लिए उनसे यही दरख्वास्त है कि जरूर कमेंट कीजिए सब्सक्राइब पर, अब हम वहां पर बहुत एक्टिव हैं। ठीक, शुक्रिया।
शुक्रिया।
उम्मीद है आपको भी मजा आया। यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए पुलियाबाजी@gmail.com पर या फिर @पुलियाबाजी ट्विटर पर। शुक्रिया।